हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। यूं ही कुछ दिन बीत गए थे। उन तीनों की शादी को एक महीना होने को था। कबीर और माधुरी हर बात से बेखबर, हर चिंता फिक्र से दूर एक दूसरे के साथ अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे थे। कई देश घूम चुके थे वो, और अब उनके वापसी के दिन नज़दीक थे। धृति और अर्णव का नोकझोंक से भरा रिश्ता यूं ही आगे बढ़ रहा था। सालों की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थीं। अर्णव की शरारतें थीं कि वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थीं, और उसके साथ ही बढ़ रही थीं उनकी मोहब्बत और उनके बीच प्यार भरी खट्टी मीठी नोकझोंक। अंजलि दीदी जीजू और अक्षु के साथ अपने घर चली गई थीं, पर बाकी सब यानी दादा दादी, मिस्टर एंड मिसेज रायजादा यहीं थे, और अब वो यहीं रहने वाले थे अर्णव और तृप्ति के साथ। इन दोनों जोड़ों से कुछ अलग कहानी थी निहारिका और मृणाल की। हालांकि प्यार उनके दरमियां भी बेशुमार था, हर बीतते लम्हे के साथ जैसे जैसे वो एक दूसरे को जानते समझते जा रहे थे, एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ते जा रहे थे, उनका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता जा रहा था। इस दौरान उन्हें आपस में ज्यादा वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मृणाल का ऑफिस का काम बढ़ा हुआ था, और जो वक्त उसे मिलता वो ज्यादातर कुश के साथ ही बीत जाता था। फिर भी निहारिका शिकायत नहीं करती थी, उसका भी ज्यादा ध्यान कुश पर ही रहता था। सारा दिन वो कुश के साथ बिताती थी, उसका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे उन दोनों की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती जा रही थी, और कुश उसके साथ आराम से रह भी लेता था, पर अब भी वो उसे अपनी मम्मा के रूप में अपना नहीं सका था। निहारिका की कोशिशें जारी थीं, और एक उम्मीद थी कि कभी तो वो उसे अपनी मम्मा के रूप में अपना लेगा। सुबह का वक्त था, अर्णव अपना ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, और धृति उसके बैग में जरूरी फाइल्स रख रही थी। अर्णव जी, धृति से पुकारने पर अर्णव ने वॉच पहनते हुए ही जवाब दिया। सुनिए ना, अर्णव को काम में व्यस्त देखकर धृति ने जरा नाराजगी दिखाई, और अगले ही पल अर्णव अपने सब काम छोड़कर उसे देखने लगा। सुनाइए मेरी जान, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्णव का वही प्यार और छेड़छाड़ भरा अंदाज, जिसे देखकर धृति की नाराजगी कुछ कम हुई, और उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखते हुए आगे कहा, आज जरा जल्दी वापस आ जाइएगा। क्यों, मुझसे बिना लड़े दिन नहीं कटेगा तुम्हारा जो मुझे जल्दी बुलाना चाहती हो? अर्णव ने भौंच काते हुए सवाल किया। लबों पर अब भी शरारती मुस्कान बिखरी थी। मज़ा आता था उसे यूं धृति को चिढ़ाने और उसे गुस्सा दिलाने में, और धृति चिढ़ भी बहुत जल्दी जाती थी, जैसे अभी चिढ़ हुई थी। देखिए अब आप बात को बिगाड़ रहे हैं, मैंने कितने प्यार से आपको जल्दी आने कहा था, पर आप ताने मार रहे हैं मुझे। धृति ने नाराज़गी से अपने गालों को फुलाया और शिकायत भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। अर्णव उसके एक्सप्रेशन देखकर हौले से हंस पड़ा, पर धृति की घूरती निगाहें देखकर उसने तुरंत ही खुद को संभाला और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उसने आगे कहा, चलो अब मुझे घूरना बंद करो और बताओ क्यों बुला रही हो मुझे जल्दी घर? हमारी शादी को एक महीना होने वाला है, पर आपको आपके ऑफिस से फुर्सत ही नहीं है। आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और मैं यहाँ घर पर। शाम को आप लौटते हैं तो बाकी सबके साथ रहते हैं, मेरे पास सिर्फ रात में आते हैं। मुझे आपके साथ ठीक से वक्त बिताने का भी मौका नहीं मिलता, आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती मैं, और जो वक्त हमें साथ मिलता भी है उसमें आप मुझे तंग करते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है। धृति जैसे जैसे बोल रही थी, अर्णव के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। माथे पर बल डाले वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। अर्णव की आंखों में झलकते सवाल को समझते हुए धृति ने संजीदगी से आगे कहना शुरू किया, शादी के बाद आपने नहीं कहा था कि जब तक हम हनीमून पर नहीं जाते हम यहीं अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करेंगे, और हनीमून पर तो कपल घूमने जाते हैं ना, तो क्या आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाएंगे? धृति का सवाल सुनकर अर्णव के चेहरे के भाव कुछ बदल गए और उसने धृति की ओर कदम बढ़ा दिए। हनीमून पर घूमने के अलावा और भी बहुत कुछ किया जाता है जाने जा। अर्णव ने इंटेंस निगाहों से उसे देखा और आंखों से ही छेड़ दिया। उसकी बातों का मतलब समझते हुए धृति ने खींचते हुए मुंह बना लिया, बहुत बुरे हैं आप, हमेशा मुझे सताने के लिए बात को उस दिशा में मोड़ देते हैं। तुम उन बातों से अब भी इतना कतराती क्यों हो? अर्णव के रुख पर संजीदगी के भाव उभरे, कदम धृति के ठीक सामने आकर ठहरे और नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। उसकी निगाहों का असर था कि धृति के गोरे मुखड़े पर हया की लाली बिखर गई और लरजती पलकों ने झुककर उसके सुर्ख रुखसारों को चूम लिया। शर्म आती है मुझे, आप जिस अंदाज में मुझे देखते हैं अजीब अजीब सा फील होने लगता है मुझे। उफ़, तुम्हारी इस सदा पर तो मैं अपना दिल क्या जान भी वार दूं? अर्णव धृति को यूं शर्माते देखकर दिलकशी से मुस्कुरा दिया और उसकी कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। धृति उसके चौड़े सीने से आ टकराई, पल घर को उसकी धड़कनें थम गईं और सांसें तेज चलने लगीं, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और कान जल उठे। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और रुख पर नाराजगी के भाव लाते हुए उसके सीने पर अपनी हथेली टिकाई उसे खुद से दूर धकेलने लगी। हटिए आप, तैयार होइए और ऑफिस जाइए। अब मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। अर्नब ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद से सटा लिया और उसकी चंचल निगाहें अब भी त्रिति के चेहरे पर फिसल रही थी। अर्नब के शब्द त्रिति के कानों से टकराए और खुशी व हैरानी के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर उभर आए। आप सच में आज ऑफिस नहीं जाएंगे? धृति ने बड़ी ही उत्सुकता से सवाल किया और अपनी कचरारी आंखों से बड़ी ही उम्मीद से उसे तकने लगी। अर्नब ने धृति ने निगाहों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया, अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं जाता। धृति पल भर उसे देखते हुए सोचती रही, फिर मुंह बिचकाते हुए बोली, नहीं आप चले जाइए, कुछ दिन बाद वैसे भी आपको छुट्टी लेनी ही है, ज्यादा काम को नजरअंदाज करना भी नहीं है, बस आप शाम को जल्दी वापस आ जाइएगा, मुझे आपके साथ सनसेट देखने जाना है और अंकल की फेमस पाव भाजी भी खानी है। अर्नब पहले तो धृति का जवाब सुनकर चौंक गया, फिर उसके गाल को हल्के से खींचते हुए मुस्कुरा दिया, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो, अभी तुम्हारे जगह कोई और लड़की होती तो झट से कह देती मुझे कि ना जाऊं ऑफिस, उसके साथ रहूं सारा दिन, पर अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा तुम्हें मेरे काम की चिंता है, मन है मुझे रोकने का पर जाने को कह रही हो, तो आप जहां हैं वहां पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, अगर मेरे कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे आपकी कंपनी को लॉस होगा या उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, काम पेंडिंग रहने पर आप पर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो परेशानी तो मुझे ही होगी ना, इसलिए मैं आपके और आपके काम के बीच नहीं आना चाहती, तो मेरे साथ ऑफिस चलो, साथ में वक्त भी बिता लेंगे, काम भी हो जाएगा और दो लोग होंगे तो जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। अर्नब के इस सुझाव को धृति ने कुछ पल सोचने के बाद ठुकरा दिया, नहीं अभी मैं ऑफिस नहीं आना चाहती, आप जाइए, मैं घर पर ही आपके लौटने का इंतजार करूंगी। ओके, जैसी आपकी इच्छा। अर्नब ने भी उस पर दबाव नहीं डाला, प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर एक हाथ में अपना बैग लिए दूसरे से धृति की हथेली थामे कमरे से बाहर निकल गया। निहारिका की नींद जब खुली तो मृणाल और कुश दोनों ही गायब थे। घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। बीती रात देर से सोने के कारण शायद उसकी नींद नहीं खुली थी और मृणाल ने भी उसे नहीं जगाया। ये देखकर उसे कुछ हैरानी भी हुई। अपने बिखरे बालों को समेटते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। दोनों को ढूंढते ढूंढते निहारिका नीचे पहुंची। ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए उसके कानों में मृणाल और कुश की निश्चल खिलखिलाहट और ठहाकों की आवाज पड़ी और किन्हीं ख्यालों के तहत कदम अनायास ही बाहर की ओर बढ़ गए।
निहारिका के कदम बाहर गार्डन में आकर ठहरे और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मृणाल और कुश दोनों सर से लेकर पैर तक पानी से सराबोर थे और उनके भीगे कपड़ों से पानी टप टप गिर रहा था। पैर मिट्टी से सने थे, जिनके छींटे कपड़ों पर भी पड़ चुके थे। एक तरफ लगे टेबल पर कॉफी और दूध का खाली ग्लास रखा था। एक पाइप मृणाल के हाथ में था तो दूसरा पाइप अपनी नन्ही हथेली में थामे कुश खिलचिलाते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था, उसे भिगोकर खुश हो रहा था। कभी मृणाल उससे बचता तो कभी अपने हाथ में पकड़े पाइप से उसे भिगोने लगता, तब कुश चिल्लाते हुए उससे बचकर भागता। दुनिया जहान से बेखबर दोनों बाप बेटे पानी से मस्ती कर रहे थे, खुलकर हंस रहे थे, इस लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। पूरे गार्डन में पानी भरकर कीचड़ कीचड़ हो गया था, उसी में दोनों मिलकर धमाचौकड़ी मचाने में लगे थे। निहारिका पहले तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गई, पर जब उसकी नज़र मृणाल और कुश के खुशी से खिले चेहरों और खिलखिलाते लबों पर गई थी, उसके लबों पर भी मुस्कान उभर आई। दोनों को यूं खुलकर हंसी मजाक और मौज मस्ती करते देखकर वो मंत्रमुग्ध सी उन्हें देखती ही रह गई। टू बी कंटिन्यूड।